بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عبدالعزیز حسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول اللہ، والذین معه اشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، وہی وہ ایشور ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سبھی دھرموں پر پربھتو پردان کرے، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی پریاپت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے اتیانت کڑے اور آپس میں اتیانت دیالو ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ ایشور کے سمکش جھکے ہوئے اور نتمستک ہو کر اپنے پالنہار سے انوگرہ اور دیا و کرپا کے اچھک ہیں۔ اتیادھک سجدوں کے کارن ان کے چہروں پر سجدوں کے چن ہیں۔ ان کی یہی وشیشتا توریت میں ہے اور ان کی یہی وشیشتا انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے اپنا انکر نکالے، پھر اسے سشکت بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جائے کہ جو کھیتی کرنے والوں کو بھانے لگے تاکہ ان کے مادھیم سے کافروں کو جلایا جائے، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کرم کرتے رہے ان سے اللہ نے کشما اور مہان پرتیفل کا وعدہ کیا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ آج شنیوار ہے اور دی بہشت کی 16، شوال کی 15 اور مئی کی 6 تاریخ۔ شوتاؤ، ہمارے آج کے کاریکرم کی روپریکھا نوٹ کر لیں۔ صدا کی بھانتی آپ سب سے پہلے دیش ودیش کے سماچار سنیں گے، اس کے پشچات راج نیتک چرچا کا دینک کاریکرم ہوگا، اس کے پشچات آپ سنیں گے ساپتاہک کاریکرم ایرانی ویجن، اور سبھا کا انتم ساپتاہک کاریکرم ہوگا اچھی عادتیں۔ شوتاؤ، یہ تو ہمارے آج کے کاریکرم کی روپریکھا، اور اب آپ کچھ ہی کھنوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ محمد مہدی سے سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی نے کہا ہے کہ ایران ہمیشہ سیریائی راشٹر و سرکار کے ساتھ تھا۔ جاپان میں بھوکمپ کے بعد 50 سے ادھک جھٹکے محسوس کیے گئے۔ برٹن کے راجہ چارلز کی تاج پوشی ہو گئی ہے۔ بھارت کے منی پور راج میں ہونے والی ہنسا میں اب تک 54 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔ راشٹرپتی نے کہا ہے کہ ایران ہمیشہ سیریائی راشٹر و سرکار کے ساتھ تھا۔ راشٹرپتی سید محمد ابراہیم رئیسی نے ایک ساکشاتکار میں کہا کہ ایران ہمیشہ سیریائی راشٹر و سرکار کے ساتھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی حالیہ سیریا یاترا کے بارے میں کہا کہ ان کی دمشق یاترا کے دوران چھیتری انتراشٹری اور دیپکشی وشیوں اور پریورتنوں کے بارے میں وچار ومرش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی ایران سیریا کے ساتھ رہے گا اور وہ پرتیرودھ کا سمرتھن کرتا رہے گا۔ اسی پرکار راشٹرپتی نے کہا کہ پرتیبندھوں، دھمکیوں اور چنوتیوں کے باوجود سیریا نیائے اور شانتی کو ویوہارک بنانے کے لیے انتراشٹری شیطانی بلوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنے لکشیوں کو حاصل کرنے کے لیے سیریا کے کچھ چھیتروں پر قبضہ کر رکھا ہے تاکہ سیریائی سمپت کی لوٹ کھسوٹ کر سکے، اور یہ وہ کار ہے جسے آتنکوادیوں کا سمرتھن کر کے بھی وہ حاصل نہ کر سکا۔ پرنتو سیریائی راشٹر کے پرتیرودھ نے اس کے لکشیوں پر پانی پھیر دیا اور انتم وجے سیریا کی ہے۔ اسی پرکار راشٹرپتی نے کہا کہ کسی بھی ودیشی سینا کو سیریا کے کسی بھی چھیتر و بھاگ میں نہیں رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ایران سیریائی سرکار کے انوروھ پر آتنکواد سے مقابلے میں دمشق سرکار کی سہایتا کر رہا ہے۔ ایران کے ودیش منتری نے سوڈان کی استھتی کو بہت چنتا جنک بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس کا کوئی وکلپ نہیں ڈھونڈا گیا تو سوڈان سنکٹ چھیتر کے دوسرے دیشوں تک پھیل جائے گا۔ सूडान में लड़ाई आरंभ होने के समय से इस्लामी गणतंत्र ईरान ने वहां के हालात पर चिंता व्यक्त की है और युद्धरत पक्षों से संयम से काम लेने की सिफारिश की है और कहा है कि युद्धरत पक्ष वार्ता द्वारा आंतरिक मतभेदों का समाधान निकालें। ईरान के विदेश मंत्री ने सूडान के हालात के बारे में अरबी भाषा में ट्वीट कर लिखा है कि सूडान की स्थिति बहुत चिंताजनक है और अगर इसका कोई उचित समाधान नहीं किया गया तो ये संकट क्षेत्र के दूसरे देशों तक फैल जाएगा। उन्होंने लिखा कि खेद के साथ कहना पड़ता है कि सूडान संकट में हम कुछ विदेशी हस्तक्षेप के साक्षी हैं। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि आपस में बातचीत संकट के समाधान का बेहतरीन मार्ग है। विदेश मंत्री ने अपनी हालिया ओमान और लेबनान यात्रा के दौरान इन देशों के अधिकारियों से सूडान के बारे में वार्ता की थी। सूडान में लड़ाई आरंभ होने के समय से ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने सूडान के हालात पर चिंता जताई और कहा था कि सूडानी भाई संयम से काम लेंगे और वार्ता द्वारा घरेलू मतभेद का समाधान करेंगे। ज्ञात रहे कि पिछले महीने 15 अप्रैल से सूडान की राजधानी खार्तूम सहित विभिन्न नगरों में आंतरिक लड़ाई आरंभ हुई है जिसमें अब तक हजारों लोग घायल व हताहत हो चुके हैं और तब से अब तक कई बार युद्ध विराम हो चुका है पर लड़ाई अब भी जारी है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी ने कहा है कि इसराइल की सारी आतंकी कार्रवाइयों का जिम्मेदार अमेरिका है। अली शमखानी ने ट्वीट किया कि इसराइल की आतंकी गतिविधियों का जिम्मेदार अमेरिका है और इन गतिविधियों के परिणामों की जिम्मेदारी भी अमेरिका पर ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सालविन ने यह बयान दिया है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उस पर अंकुश लगाने की इसराइल की आजादी को मान्यता देगा। अली शमखानी ने कहा कि इस बयान का सीधा मतलब यह है कि ईरान में परमाणु प्रतिष्ठानों और लोगों पर इसराइल के आतंकी हमलों का जिम्मेदार अमेरिका और आइंदा भी उसी जिम्मेदार माना जाएगा, जबकि इन आतंकी गतिविधियों का खामियाजा भुगतने के लिए भी अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। जैक सालविन ने यह बयान तब दिया है जब वो सऊदी अरब की यात्रा कर रहे हैं और बताया जाता है कि उनकी कोशिश इसराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगी। आर्म फोर्सेस की परेड पर हमले सहित कई आतंकी कार्रवाइयां करने वाले कुख्यात आतंकी को फांसी पर लटका दिया गया। इस्लामी गणतंत्र ईरान में आर्म फोर्सेस की परेड पर आतंकी हमले के दोषी हरकतुल निजाल संगठन के सरगना हबीब फर्जुल्लाह चाब को फांसी दे दी गई। चाब ने लगभग 5 साल पहले आर्म फोर्सेस की परेड पर भयानक हमले की साजिश रची थी जिसमें बहुत से नागरिक शहीद और घायल हो गए थे। यह संगठन ईरान में दूसरे भी कई आतंकी कार्रवाइयों का अपराधी था। चाब ने वर्ष 2005 में आतंकी संगठन के सरगना के रूप में काम शुरू किया जिसे इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद इलाके के कुछ देशों और स्वीडन का समर्थन हासिल था। इस आतंकी संगठन के हमलों में 450 से अधिक ईरानी नागरिक शहीद और घायल हुए हैं। क्षमा कीजिएगा, इन आतंकी संगठनों के हमलों में 450 से अधिक ईरानी नागरिक शहीद और घायल हुए हैं। इस आतंकी संगठन ने लगभग 5 साल पहले आवाज में आर्म फोर्सेस की परेड पर बड़ा हमला किया था और इस हमले की जिम्मेदारी भी स्वीकार की थी। ये आतंकी संगठन दक्षिणी पश्चिमी ईरान के इलाके में विध्वंसक कार्रवाइयां करता रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने अमेरिका और ताइवान के मध्य सैन्य संबंधों के मजबूत होने पर चिंता जताई है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ताइवान को बारूद का ढेर बना रहा है। 25 व्यक्तियों पर आधारित एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ताइवान की यात्रा पर गया है जिसमें हथियारों की बिक्री करने वाले एजेंट भी शामिल हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ ने बल देकर कहा कि अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियारों की बिक्री से अमेरिका और चीन के संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा और ये कार्य एकल चीन नीति के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि हथियारों के दलालों की ताइवान की यात्रा इस बात का एक अन्य सबूत है कि अमेरिका ताइवान को बारूद के ढेर में परिवर्तित कर रहा है और ये विषय हमारे ताइवानी लोगों के लिए समस्या का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि डीपीपी अधिकारियों को ताइवान के विरोधी लोगों की आवाज सुनना चाहिए और ताइवानी लोगों के हितों के लिए मनमानी ढंग से किए जा रहे लेन देन बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर अमेरिका का आह्वान करते हैं कि वो वन चाइना नीति के प्रति वचनबद्ध रहे और ताइवान को हथियारों की बिक्री बंद करे। इसी प्रकार चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है और जो भी विदेशी चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा और ताइवान स्टेट में शांति व सुरक्षा को कमजोर करेगा उसे अपनी गलतियों की कीमत भी चुकानी होगी। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वर्तमान हालात में भारत पर निर्भर है कि वो किस तरह का माहौल पैदा करे जिसमें बातचीत हो सके। बिलावल ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का स्टैंड यही है कि अगस्त 2019 में भारत की ओर से जो कदम उठाए गए वो बहुत संगीन थे और जब तक उन पर पुनर्विचार नहीं किया जाता उस समय तक दो तरफा बातचीत मुश्किल है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को यूनाइटेड किंगडम में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत इस समय लोकतंत्र है जो किसी भी वैश्विक मानदंडों पर सबसे अधिक कार्यात्मक है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने डायस्पोरा पर गर्व है। भारत के मणिपुर राज्य में होने वाली हिंसा में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। भारतीय सूत्रों के अनुसार 54 मृतकों में 16 शव चूड़ाचंदपुरा जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखे हुए हैं जबकि 15 शव इम्फाल ईस्ट के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में हैं। इसके अलावा इम्फाल पश्चिम के लामफेल में क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने 23 लोगों के मरने की पुष्टि की है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स की ताजपोशी हो गई है। शनिवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर में एम्बे में उन्होंने शाही मुकुट पहना और विधिवत ब्रिटेन के किंग बन गए। राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ क्वीन कंसोर्ट कैमिला को भी ताज पहनाया गया। शाही ताज पहनने से पहले उन्होंने एक शपथ ली। इस शपथ में उन्होंने कहा कि वो ब्रिटेन के सभी लोगों पर न्याय और दया के साथ शासन करेंगे। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप की ओर शरणार्थियों का नया रेला, प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी का ब्रिटेन के भीतर खुलकर विरोध और गुलाम नबी आजाद का दावा कि कश्मीर को उसका हक दिलवा कर रहेंगे। दोस्तों, इन विषयों पर हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। नए शरणार्थियों को लेकर यूरोपीय नेताओं के बीच मतभेद उभरने लगे हैं। वैसे इस मुद्दे को लेकर इटली और फ्रांस के बीच तनाव तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इस बारे में एक समीक्षा सुना रहे हैं अख्तर अब्बास।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से जहां राजनीतिक और आर्थिक संकट उभर कर सामने आ रहे हैं, वहीं असुरक्षा और भोजन की कमी में भी वृद्धि हो रही है और यूरोपीय देशों की ओर शरणार्थियों का नया रेला भी शुरू हो गया है। इस बीच इटली जैसे देश ने, जो शरणार्थियों के मुख्य ठिकाने हैं, सख्ती बढ़ा दी है और कुछ मामलों में तो उसने अपनी सीमाओं को भी बंद कर दिया है। शरणार्थियों के मुद्दे ने यूरोपीय नेताओं के बीच मतभेदों की खाई और भी चौड़ी कर दी है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डेरमेंडन ने एक तीखे और तनावपूर्ण बयान में कहा कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने देश में शरणार्थी समस्याओं को हल करने में असमर्थ हैं। उन्होंने इस बात की ओर इशारा करते हुए कि इटली एक गंभीर शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है, कहा कि श्रीमती मेलोनी की सरकार, जो दक्षिणपंथी है, जिसे उनके दोस्तों द्वारा चुना गया है और इसके चयन में कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी, फ्रांसीसी पार्टी, नेशनल असेंबली की नेता मरीन लेपेन शामिल थी, पलायन संकट का समाधान नहीं कर पा रही है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने इन बयानों को अस्वीकार्य बताया और प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि उन्होंने फ्रांस की अपनी पूर्व नियोजित यात्रा रद्द कर दी है। पलायनकर्ताओं के मुद्दे पर फ्रांस और इटली के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है और अब ये और भी गहरा हो गया है। विशेष रूप से दक्षिणपंथी मेलोनी सरकार के इटली में सत्ता में आने के साथ शरणार्थियों को स्वीकार करने पर विवाद बढ़ गया है। कुछ समय पहले ही इटली में मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार ने उन प्रवासियों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी थी जिन्हें भूमध्य सागर में एक जहाज के डूबने से बचा लिया गया था। 200 से अधिक प्रवासियों के साथ कई दिनों तक भटकने के बाद ओशन वाइकिंग नामक ये जहाज आखिरकार फ्रांस के टूलान सैन्य बंदरगाह पहुंचा। इतालवी सरकार की कार्रवाई ने फ्रांसीसी अधिकारियों को नाराज कर दिया और दोनों पड़ोसियों के बीच पहले से ही खराब संबंध और भी खराब व तनावग्रस्त हो गए। शरणार्थी इटली की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक हैं। इस देश ने, जो अब गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, शरणार्थियों को स्वीकार करने की शर्तों को बहुत कठिन बना दिया है। शरणार्थियों के मुद्दे में इतालवी अधिकारियों, विशेष रूप से वर्तमान दक्षिणपंथी सरकार को अन्य यूरोपीय देशों के साथ एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांसीसी समाचार पत्र फिगारो के मुताबिक 2023 की शुरुआत से अब तक 42,400 से अधिक लोग नाव के जरिए अवैध रूप से इटली पहुंचे हैं, जबकि पिछले साल और इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा केवल 11,200 लोगों का था। अब शरणार्थियों को लेकर इटली और फ्रांस के बीच राजनीतिक तनाव तेज हो गया है। इस बीच इन राजनीतिक तनावों के मुख्य शिकार अभी भी वे शरणार्थी हैं जो अपनी गंभीर राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों से बचने की उम्मीद में यूरोप जाते हैं। शरणार्थियों के मामलों के विशेषज्ञ गेराल्ड मूर का कहना है कि शरणार्थी दुनिया में सबसे कमजोर और सबसे आसान हथकंडा है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी के समर्थकों की संख्या घटकर मात्र 9% ही रह गई है। पेश है इस बारे में कासिमजादे की रिपोर्ट।
ब्रिटेन के राजा चार्ल्स की ताजपोशी के समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और इस समारोह का अभ्यास बड़ी तन्मयता से किया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन में लोकतंत्र के समर्थकों ने ऐलान किया है कि वे शाही व्यवस्था और शाह के खिलाफ, जिनके चयन में जनता की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी भूमिका नहीं होती, लंदन और दूसरे सभी शहरों में प्रदर्शन करेंगे और अपने प्रदर्शन के जरिए राजशाही सिस्टम के संदर्भ में अपने विरोध को व्यक्त करेंगे। एक नागरिक का कहना था कि शाही व्यवस्था अनेक समस्याओं में घिरी है। शाही खानदान की लोकप्रियता तेजी से घटती जा रही है। यही वजह है कि ताजपोशी के समारोह के समर्थकों की संख्या मात्र 9% है। प्रदर्शनों का ऐलान होते ही ब्रिटेन की सरकार और संसद हरकत में आ गई और देश भर में प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए बहुत बड़ा कानून बनाकर उसे लागू कर दिया, जिसका अर्थ यह है कि इस समारोह के खिलाफ कहीं कोई प्रदर्शन न होने पाए। इस कानून के अनुसार उन प्रदर्शनकारियों को 12 महीने की जेल तक हो सकती है जो सड़कों, रेलवे या एयरपोर्ट का काम रोकने की कोशिश करेंगे। इस तरह के लोगों को नकदी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। ब्रिटेन में पास होने वाले इस कानून से पुलिस को इतनी ताकत मिल गई है कि वो केवल संदेह के आधार पर किसी की भी तलाशी ले सकती है, पूछताछ कर सकती है, यहां तक कि उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। इस पर लोगों को गहरी आपत्ति है।
For Republicans to convert more people.
लोकतंत्र के समर्थकों का कहना है कि ये कानून बिल्कुल गलत है, इसे हरगिज लागू नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे काला कानून कहा है और कुछ का कहना है कि ये कानून विरोधी स्वर को कुचलने की कोशिश है। एक महिला प्रदर्शनकारी का कहना था कि हम इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकले हैं। ये कानून प्रदर्शन के अधिकार पर हमला करता है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने वाला है। आलोचक कहते हैं कि इस समय आर्थिक संकट की वजह से पूरे देश की जनता गंभीर कठिनाइयां झेल रही है। इन हालात में अगर मिलियनों पाउंड इस समारोह पर खर्च करने का फैसला किया जाता है तो यह फैसला किसी भी तरह तार्किक नहीं हो सकता। ये एक तरह से अस्वीकार्य और जनता को चिढ़ाने की कोशिश है। ब्रिटेन का मीडिया कहता है कि ये बेहद महंगा और कड़ी सुरक्षा में आयोजित होने वाला समारोह इन हालात में आयोजित हो रहा है, जब शेल्टर नाम की संस्था का कहना है कि ब्रिटेन की 67 मिलियन की आबादी में 20% लोग गरीबी में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
तो दोस्तों, अब हम रुख करते हैं भारत का। कश्मीरी नेता गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि वे कश्मीरियों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलवाकर ही चैन से बैठेंगे। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष और भूतपूर्व कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस कराने के लिए वो एक अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35A के बारे में वो कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। मेरा ये मानना है कि जो संभव है मैं उसे वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के साथ साथ मैं लोगों से यह वादा करता हूं कि यहां की नौकरियां और यहां की ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के वासियों का हक होना चाहिए और इसके लिए वो कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे और वो केंद्र को इसके लिए राजी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कन्फ्रंटेशन की सियासत पर यकीन नहीं रखता हूं क्योंकि हमें जो कुछ हासिल करना है वो नई दिल्ली से हासिल करना है और मैं नई दिल्ली के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर के तमाम हितों की सुरक्षा करूंगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
हमसे जो नौकरी का जम्मू कश्मीर की लोगों का सिर्फ जम्मू कश्मीर की नौकरी पर हक था वो हमसे छीना गया है, उसको हमने वापस लाया है। ये हमारे बुनियादी उसूल है, इसके लिए हमने लड़ाई करनी है, जद्दोजहद करनी है और वो जितनी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें सड़कों पे जाना पड़े, गलियों में जाना पड़े, भूखा रहना पड़े, कैसा रहना पड़ेगा, ये जद्दोजहद कायम रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और उसके साथ ही मकान देने के लिए जो आज से कई साल पहले ये ریاست مغلوں کے وقت میں بھی ریاست تھی، یہ ریاست سکھوں کے وقت میں بھی ریاست تھی، للتا دتیا کے وقت میں بھی تھی کئی ہزار سال پہلے، لیکن آج ہم کو اس ٹکڑے میں یو پی کے کمرے میں بند نہیں کر سکتی، ہم تازہ ہوا رہنے کے عادی ہیں، ہزاروں سالوں سے ہم کو کمرے میں بند نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہوا میں رہنے والے ہم وہ تازہ ہوا اسی بڑی وشال خوشحال اور عالیشان اسٹیج کی باشن میں کہلانا چاہے۔
اس بھی جموں پرانت کے راجوری میں ایک بار پھر بھارتیہ سرکشا بلوں پر ایک آکرمن ہوا جس میں 5 سرکشا کرمی ہتات اور ایک میجر گمبھیر روپ سے گائل ہوا ہے، جس کے ترنت بعد ایک بڑے چھیتر کا اب تلاشی ابھیان آرمبھ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے اور بیورے کی پرتیکشا ہے۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ پچھلے کئی دیوس سے یہاں پر جو گھٹنائیں گھٹی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ملٹنسی بڑھی ہے، کیونکہ 2 گھٹناؤں میں ابھی تک 11 کے نکٹ سرکشا کرمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس بیچ سری نگر کے نکٹوردی چھیتر بیروا میں ایک مڑ بھیڑ کے دوران ایک الگاوادی چھاپہ مار کے ہتات ہونے کی سوچنا ہے۔ پچھلے 90 گھنٹوں کے دوران 3 مڑ بھیڑیں ہوئیں جن میں ابھی تک 5 الگاوادی چھاپہ مار ہتات ہوئے ہیں۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوا۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاؤ، اب پرستت ہے ہمارا سبھا کا ساپتاہک کاریکرم ایرانی ویانجن۔
ایرانی ویانجن،
دوستو، کاریکرم ایرانی ویانجن کی ایک انکڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور غائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ ہم اس کاریکرم میں آپ کو پوروی آذربائیجان پرانت کی یاترا پر لائے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی سنسکرتی اور پکوانوں سے آپ کو اوگت کرائیں گے۔
دوستو، آذربائیجان ایک ایتہاسک دھرتی ہے جس کے اتہاس میں بڑے اتار چڑھاؤ ہے۔ اس دھرتی کے گوروؤں کی سوچی بہت لمبی ہے۔ یہ علاقہ پرانے زمانے میں ماد جاتی کے نینترن والے علاقوں میں تھا۔ ہخا منشی دور میں یہ ہخا منشی شاسن کا حصہ بنا۔ اسلام کے آگمن کے بعد آذربائیجان کو ایران کے مہتوپورن راجیوں میں گنا جاتا تھا۔ ساسانی شاسن شنکھلا کا انت ہو جانے کے بعد یہاں ہمیشہ بہت بڑے اور حیرت انگیز پریورتن ہوتے رہے۔ ایران کے سمکالین اتہاس میں اس علاقے کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اس علاقے سے بڑے بہادر یودھا نکلے ہیں۔
آپ کے لیے یہ جاننا روچک ہے کہ سکندر کے زمانے میں ایران کا گورنر آترپات تھا، جس کا ارتھ ہوتا ہے وہ ہستی جس کی رکشا اگنی کرے۔ اسی گورنر کی وجہ سے پہلے اس کا نام آترپاتکان پڑ گیا، جو بعد میں بدل کر آذربائیجان اور پھر آذربائیجان ہو گیا۔ آذربائیجان ایران کے پشچمتری بھاگ میں ہے اور اب 2 پرانتوں، پوروی آذربائیجان اور پشچمی آذربائیجان میں بٹا ہوا ہے۔ اس کاریکرم میں ہم پوروی آذربائیجان کی سیر آپ کو کروائیں گے، جس کا کیندریہ نگر تبریز ہے۔
تبریز پراچین شہر ہے۔ اس کے بارے میں بالکل آرمبھک شیلالیکھ سارگون دوتیے کے کال کے ہیں، یعنی 8ویں شتابدی عیسیٰ پورو کے کال سے ان شیلالیکھوں کا سمبندھ ہے۔ ان شیلالیکھوں میں تبریز کو بہت بڑا آباد اور اہم شہر بتایا گیا ہے۔ इस शहर के अलग अलग दौर में बहुत सारे बादशाहों ने राजधानी के रूप में इसको चुना। मौजूदा तबरीज शहर तौरीजे नाम के प्राचीन शहर के खंडहरों पर बसा है। तौरीजे व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसके पूरब और पश्चिम का संपर्क पुल माना जाता था। ये शहर आर्मीनिया के अश्कानी जाति के शासकों के जमाने में इस पूरे इलाके की राजधानी रहा।
पौष्टिक और स्वादिष्ट ईरानी खानों का परिचय। घर बैठे सीखिए लज्जतदार ईरानी खाने पकाने की विधि। कार्यक्रम श्रृंखला ईरानी व्यंजन में हर शनिवार को कार्यक्रम ईरानी व्यंजन।
तबरीज बड़ा सुंदर शहर है। यहाँ गर्मियों का मौसम गर्म और शुष्क होता है, जबकि जाड़ों में बड़ी सर्दी पड़ती है। यहाँ के निवासी आज़री तुर्की भाषा में बात करते हैं। अलबत्ता यहाँ के कुछ गांवों और इलाकों में ताती भाषा भी बोली जाती है। जैसे क्रीनगान नाम के गांव के लिए ताती भाषा बोलते हैं। अरसपारान इलाके में कुर्द जाति के लोग बसते हैं। इस प्रांत के निवासी अधिकतर मुसलमान हैं, जबकि कुछ ईसाई भी यहाँ बसते हैं।
अगर तबरीज और पूर्वी आज़रबाईजान के पर्यटन आकर्षकों की बात की जाए तो तबरीज के फूल पार्क, अरसबारान जंगल, कंदवान गांव, बाबक दुर्ग, नीली मस्जिद इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तबरीज का बाजार भी यहाँ के महत्वपूर्ण आकर्षणों में से एक है। ये बाजार दुनिया के सबसे बड़ा छतदार बाजार है। इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। ये बाजार यूनेस्को द्वारा पंजीकृत किया जा चुका है। ये तबरीज शहर के बड़े सुंदर और आकर्षक स्थलों में गिना जाता है। अतीत में तबरीज सिल्क रोड के किनारे स्थित था। यही वजह है कि तबरीज का बाजार पुराने जमाने से ही आर्थिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण था। यहाँ हमेशा बड़ी चहल पहल रहा करती थी। ये तबरीज के निवासियों और बाहर से आने वाले सैलानियों के बीच सौदों का बड़ा केंद्र था और आज भी है।
तबरीज के पर्यटन स्थल हमें इस शहर की प्राचीनता और इतिहास के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। अलबत्ता केवल पर्यटन स्थल ही किसी सभ्यता का आईना नहीं है, बल्कि वहाँ के पारंपरिक खाने भी इस पहले से बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और किसी भी इलाके की संस्कृति के दर्शन कराते हैं। तबरीज शहर में बड़े स्वादिष्ट खाने पकते हैं। यहाँ खानों में विविधता इतनी ज़्यादा है कि हर पसंद और हर स्वभाव का व्यक्ति यहाँ से संतुष्ट होकर ही लौटता है। ये भी बताना ज़रूरी है कि अज़रबैजान तुर्कों के हाथों में बड़ा जायका है। वे जो ही खाने पकाते हैं स्वादिष्ट होते हैं। वे बड़ी महारत से पारंपरिक खाने पकाते हैं। कई प्रकार की आश, कई तरह के कोफ्ते, तरह तरह की मिठाइयाँ यहाँ आपको मिल जाएंगी। आश के बारे में आप जानते हैं कि ईरान का मशहूर पकवान है, जिसका रूप तो सूप जैसा होता है, मगर ये सूप से अलग खाना है। तबरीज का आश दूग और आश रिश्ते बहुत मशहूर आश है। कलम कुमरी आश, कुरूत फीले आश, ये सब तबरीज के बहुत मशहूर खाने हैं। अगर मिठाइयों की बात की जाए तो कुराबिया, नुका, चुर्तमे, सुजुक, मराक़े यहाँ की मशहूर मिठाइयाँ हैं, जो स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है।
जब ईरानियों के बीच तबरीज के लोगों के खानों की बात होती है तो एक स्वादिष्ट खाना जिसका जिक्र ज़रूर होता है वो है तबरीजी कोफ्ता। ये बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक पकवान है। کوفتے تو ویسے ایران ہی نہیں پورے پشچمی ایشیا میں مشہور ہیں، جبکہ بھارت اور پاکستان سہت انیک دیشوں میں کوفتے پکائے جاتے ہیں، مگر تبریز کے کوفتے الگ پرکار کے ہوتے ہیں۔ تبریز کے کوفتے قیمے، دالوں اور ساگ سے بنائے جاتے ہیں۔ پراچین کال میں یہ ہوتا تھا کہ جب گوشت کا قیمہ کوٹا جاتا تھا تو ان میں دالوں اور ساگوں کو بھی ملا دیا جاتا تھا اور اسے کوٹتے تھے۔ اس طرح کوفتے کا مکھیہ پدارتھ تیار ہو جاتا تھا۔
اگر گھر میں تبریزی کوفتہ بنانا ہے تو اسے بنانے کا طریقہ نوٹ کر لیجیے۔ سب سے پہلے تو آدھا کلو بکری یا بھیڑ کا قیمہ لے لیجیے، تین پرکار کے ساگ 100-100 گرام، آدھا کپ چاول، چنے کی دال آدھا کپ، پیاز 3، انڈا 1، آلو 1، ٹماٹر کی پیوری 2 چمچ، مکھن 50 گرام، خوبانی 10-15، گوشت کا مسالہ، ہلدی، کالی مرچ اور نمک، یہ ساری چیزیں لے لیجیے۔
آئیے اب آپ کو تبریزی کوفتہ بنانے کی ودھی بتاتے ہیں۔ پہلے قیمے کو کچھ منٹ کے لیے اچھی طرح مکسر میں مکس کر لیجیے، پھر اس کے بعد قیمے کو فریج میں رکھ دیجیے۔ چنے کی دال کو 2 گھنٹے پہلے بھگو دیجیے۔ اب اسے چھلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 کپ پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیجیے تاکہ پوری طرح سے وہ پک جائے۔ چاول بھی آپ کو دال کی طرح 2 گھنٹے پہلے پانی میں بھگونے ہوں گے۔ اب 2 کپ پانی کے ساتھ اور تھوڑی سی ہلدی ملا کر اسے پکنے کے لیے رکھ دیجیے۔ تھوڑا کچا رہ جائے تب ہی اس کا پانی پسا لیجیے۔ پیاز چھوٹی چھوٹی کاٹ لیجیے اور ایک بڑی پتیلی میں اسے لال کر لیجیے جس میں آپ کو کوفتے بنانے ہیں۔
پیاز لال ہو جائے تو پتیلی سے نکال لیجیے۔ اب اسی پتیلی میں ٹماٹر کی پیوری ڈال دیجیے اور مکھن اور مسالوں کے ساتھ اسے کچھ دیر تک پکائیے کہ پیوری کا کچا پن ختم ہو جائے۔ ایک پیاز کو رندا کر کے اس کا پانی پوری طرح نکال لیجیے اور اب اسے پانی کے ساتھ ٹماٹر کی پیوری میں ڈال دیجیے۔ جب چاول اور چنے کی دال کا پانی پوری طرح نکل جائے تو سمجھ لیجیے کہ اب یہ دونوں چیزیں تیار ہیں۔ پہلے پکے ہوئے آلو اور دال کو اچھی طرح کوٹیے۔ اب تلی ہوئی پیاز الگ کر لیجیے۔ اب یہ کیجیے کہ قیمے کو کوٹے ہوئے آلو اور دال، ادھ پکے چاول، ساگ، پیاز، انڈے، نمک، ہلدی اور گوشت کے مسالے کے ساتھ اچھی طرح ملا دیجیے اور گونتھتے رہیے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح مل جائیں۔ اب کوفتے کے لیے اس پیس کو اٹھائیے اور انار کی سائز کا کوفتہ بنائیے اور اچھی طرح گول کر لیجیے۔ کوفتوں کو پتیلی میں رکھ دیجیے اور اس کا ڈھکن ڈھانک دیجیے۔ تھوڑی دیر بعد اس پر ٹومیٹو سواس ڈال دیجیے اور 10 منٹ تک پکنے دیجیے۔ اس کے بعد ڈھکن بند کر دیجیے اور 45 منٹ تک پکنے دیجیے۔ اس طرح تبریزی کوفتہ تیار ہو جائے گا۔ یہ بڑا سوادشٹ کھانا ہے، اسے آپ مہمانوں کو بھی پروس سکتے ہیں۔ ایک کوفتہ پورا آہار ہے، یعنی اس کے ساتھ الگ سے روٹی یا چاول کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور کوفتے کو کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاؤ، اب پرستت ہے ہماری سبھا کا انتم کارکرم اچھی عادتیں۔
اچھی عادتیں،
دوستو، کارکرم اچھی عادتیں کی ایک انی کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने समय के सही प्रबंधन और उपयोग के बारे में बताया था। इसमें कोई शक नहीं है कि समय इंसान के लिए सबसे मूल्यवान पूंजी है, जिसका सही इस्तेमाल करके हम विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट आध्यात्मिक और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कुरान समय के महत्व का उल्लेख करते हुए इसे बहुमूल्य और समस्त गुणों की माँ करार देता है। समय का महत्व इतना ज्यादा है कि खुदा ने उसकी कसम तक खाई है।
समय प्रबंधन का मतलब यह है कि हम अपने जीवन के लिए और अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए योजना बनाएं और अपने समय को व्यवस्थित करें, ताकि हम उससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसके अलावा हम अपने गतिविधियों के बीच के समय को भी सही से व्यवस्थित करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल करें। जब आपके पास समय कम और बहुत ज़्यादा होगा तो ये आदत आपको उस समय का सबसे बुद्धिमानी तरीके से उपयोग करने में मदद करेगी।
दिनचर्या के कार्यों और गतिविधियों के लिए कार्यक्रम का होना निश्चित रूप से हमें अपने समय का प्रबंधन करने और उसे नियंत्रण करने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप समय की बचत होगी और हमें दूसरे कई काम करने का भी मौका मिल जाएगा। आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, इसके लिए आपको एक योजना और कार्यक्रम तैयार करना होगा। इससे आपको तनाव नहीं होगा और आप समय पर काम अंजाम दे सकेंगे। समय के प्रबंधन का एक अन्य लाभ निर्धारित समय पर कामों को अंजाम देना और कार्यों को पूरा करना है। समय प्रबंधन से जहां हम कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अंजाम दे सकते हैं, वहीं काम का बोझ और रोजमर्रा की गतिविधियों को कम करने का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
समय प्रबंधन से हमें अपने कार्यों की सही और बेहतर तरीके से निगरानी करने का मौका मिलता है, जिन्हें हमारे लिए अंजाम देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम कार्यों के मूल्यांकन के साथ ही उनकी प्राथमिकता निर्धारित कर सकते हैं और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें बांट सकते हैं। इसी तरह से हमें उन कार्यों की जो हम अंजाम दे चुके हैं या उन कार्यों को जिन्हें हम अंजाम देना चाहते हैं उनकी समीक्षा कर सकते हैं। गतिविधियों के लिए व्यापक योजना बनाने और जीवन में उद्देश्यपूर्ण होने के कारण हमें निराशा, अफसोस और समय की बर्बादी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप हम समय बीत जाने के बाद पछताने और विफलता से बचेंगे। समय का प्रबंधन करके हम महत्वहीन गतिविधियों में अपना समय बर्बाद करने से बचते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपने कार्यों के निपटान के लिए पर्याप्त समय होता है।
दोस्तों, हजरत अली अलैहिस्सलाम समय के सही इस्तेमाल के बारे में फरमाते हैं कि ईमान रखने वाला इंसान अपने समय को तीन भागों में बांटता है। एक भाग में वो अपने पालनहार की इबादत करता है और उससे संपर्क स्थापित करता है। दूसरे भाग में भोजन, लिबास, घर और सवारी जैसी जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति के लिए प्रयास करता है। तीसरे भाग को वो आराम करने, मनोरंजन और हलाल चीज़ों से आनंद लेने के लिए विशेष करता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इस मार्ग से हटकर चलना सही नहीं है। अर्थात जीविका हासिल करना, इबादत करना और हलाल चीज़ों से मनोरंजन करना और आनंद लेना इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से है, जिनमें से किसी एक को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
संभवतः आपने कुछ लोगों से ज़रूर सुना होगा कि उनके पास कामों को अंजाम देने के लिए समय नहीं है, इसलिए उनके काम अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए समय प्रबंधन से पहले समय की कमी के कारण को जानना ज़रूरी है। यहाँ हम समय की कमी के कारणों की समीक्षा करेंगे। अवास्तविक लक्ष्य समय कम पड़ने के कारणों में से एक है। अत्यधिक बड़े और अतार्किक सपने और लक्ष्य असमंजस में डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें पूरा करने के लिए समय काफ़ी नहीं बचता है। हमें सीमित समय और अपनी सीमित प्रतिभाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हमें समय का प्रबंधन करना चाहिए।
दोस्तों, समय कम पड़ने का दूसरा कारण प्राथमिकताएं तैयार करने में कौशल की कमी का होना है। ऐसे में कई बार लोग बड़ी मात्रा में काम और गतिविधियों में भ्रमित हो जाते हैं। कार्यों को प्राथमिकता न दे पाने के कारण उन्हें समय की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर लोगों को निर्णय लेने में कठिनाई होती है और वे अपने कामों को सही तरीके से प्राथमिकता नहीं दे पाते। समय की कमी का एक अन्य कारण अपने कामों को दूसरों को न सौंपना है। कभी कभी दूसरों के बीच कार्यों को बांटना और उन्हें जिम्मेदारियां देना जरूरी होता है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम अंजाम दिए जा सकें। समय की कमी के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कामों को टालना है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास काम अंजाम देने के लिए पर्याप्त समय हो, लेकिन विभिन्न कारणों से वो काम को टालता रहता है और समय बर्बाद करता रहता है। और जब समय काफ़ी कम रह जाता है तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहता है।
अक्सर मौक़ों पर हमारे इर्द गिर्द के लोग हमसे कहते हैं कि उन्हें अपना समय दें और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में उनकी मदद करें। ऐसे मौके पर आपको पहले उस व्यक्ति के अनुरोध की पड़ताल करनी चाहिए और उस अनुरोध के लिए हाँ कहने की ज़रूरत को तौलना चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करना अच्छा है, लेकिन अगर उन्हें नहीं भी किया जाए तो उसका कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको ऐसे अनुरोधों के लिए हाँ कहने से बचना चाहिए, क्योंकि समय प्रबंधन में इस बात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप ना कहकर अपने अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय बचा सकते हैं। ना नहीं कहने की कमजोरी उन कमजोरियों में से एक है जिसके लिए हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हर बार जब हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हम नहीं नहीं कह सकते हैं, तो दुर्भाग्य से हमें इस सच्चाई का सामना करना चाहिए कि ना नहीं कहने से हमारे जीवन की संतुष्टि और आत्मसम्मान कम हो जाता है।
दोस्तों, ऊंचाइयों पर पहुंचने की कामना करने वाले लोग हमेशा बेहतरीन काम करना चाहते हैं और उनका प्रयास होता है कि उनके सभी काम सही हों। इसे पूर्णतावाद कहते हैं। पूर्णता या किसी कार्य को करने के लिए मानकों के स्तर को इतना बढ़ा देना कि उन मानकों का पालन करने में बहुत अधिक मेहनत लगती है और लागत आती है, इसीलिए वो करने योग्य नहीं है। आपने शायद लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये तो हम कुछ भी नहीं करते, जब करते हैं तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि हमें काम करने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ना होगा।
दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि समय और समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? कई अन्य कारकों के साथ साथ समय का प्रबंधन करने की आपकी क्षमता एक प्रबंधक के रूप में आपकी सफलता या विफलता का निर्धारण करने में आपकी सहायता करेगी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय एक आवश्यक संसाधन है। समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। आप इसे बचा कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जब एक बार हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं लौट सकता है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें समय लगता है, इसलिए जितना बेहतर आप अपने समय का उपयोग करते हैं उतना ही आप नतीजा हासिल कर सकते हैं। समय बर्बादी से तनाव, चिंता और अवसाद उत्पन्न होता है।
साथ ही समय प्रबंधन में कुछ गलतियां हमें अपना काम ठीक से करने में असमर्थ बना देती हैं। सारे काम खुद अंजाम देना इन्हीं झूठी मान्यताओं में से एक है। समय प्रबंधन और दैनिक कार्यों को करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सारणी रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सभी काम खुद करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और हमें निश्चित रूप से अपने काम, गतिविधियों और जीवन में दूसरों के सहयोग और साथ की ज़रूरत होती है। हमें कभी कभी टीम वर्क और सहयोग की जरूरत होती है। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें अपना काम करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता, सहयोग और साथ की जरूरत होती है। कुछ काम हमें व्यक्तिगत रूप से करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम उन्हें किसी और को सौंप सकते हैं।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समय प्रबंधन में योजना बनाने की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी भी व्यक्ति को अपने समय का सही इस्तेमाल करने के लिए अपने दिन भर के कार्यों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। कार्यों को सिर्फ खत्म करने के उद्देश्य से अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। समय की योजना और प्रबंधन व्यक्ति को अपने काम में दिशा और प्राथमिकता का एहसास देता है और उसे अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समय की योजना और प्रबंधन एक व्यक्ति को यह जानने में मदद करता है कि क्या काम को तुरंत किया जाना चाहिए या उसे स्थगित किया जा सकता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अब समय मुख्य समाचारों के ये सारांश का। राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान हमेशा सीरियाई राष्ट्र व सरकार के साथ था और रहेगा। जापान में भूकंप के बाद 50 से अधिक झटके महसूस किए गए। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स की ताजपोशी हो गई है। भारत के मणिपुर राज्य में होने वाली हिंसा में अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदाफिज, शुभ रात्रि।